ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकारी आवास को आज लोक निर्माण विभाग ने सील कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पारंपरिक औषधियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 10वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने विश्व दृष्टि दिवस पर नेत्र रोगों, विशेष रूप से मायोपिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज एक सम्मेलन का आयोजन किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकारी आवास को आज लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने सील कर दिया है। श्री केजरीवाल द्वारा आवास को खाली करने के बाद उसे आधिकारिक तौर पर पीडब्ल्यूडी को न सौंपने को लेकर विभाग द्वारा यह कार्रवाई की गई। आवास को सील किए जाने पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने आरोप लगाया है कि इस आवास को विपक्षी दल के किसी नेता को आवंटित करने के लिए यह कार्रवाई की गई है। भाजपा नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि इस हैंडओवर की पूरी प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए।
हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। इसके साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि केजरीवाल की इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री को अवैध रूप से कब्जा करवाया, इसके पीछे की साजिश क्या है, पोजेशन सरेंडर क्यों नहीं किया पीडब्ल्यूडी, जो ये नौबत आई ये क्यों आई, ये माजरा क्या था, आखिर क्या छुपाना चाहते हैं केजरीवाल जी, उस शीश महल में क्या है ऐसा, लोग इसको जानना चाहते हैं।
वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इस कार्रवाई को प्रशासनिक कार्रवाई कहा है। दिल्ली सरकार ने आज सभी सरकारी और निजी निर्माण एजेंसियों को एंटी डस्ट कैंपेन के अंतर्गत संवेदनशील बनाने के लिए दिल्ली सचिवालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में मुख्य तौर पर सीएनडी पोर्टल और स्वच्छ निर्माण को प्रोत्साहन देने के विषय पर एजेंसियों को जानकारी दी गई। कार्यशाला के बाद आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि कार्यशाला में 120 निर्माण एजेंसी शामिल हुई और उन्हें सीएनडी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और निर्माण संबंधी 14 नियमों को लागू करने को लेकर विस्तार से बताया गया। श्री राय ने बताया कि विंटर एक्शन प्लान के तहत पर्यावरण नियमों का पालन करने वाली 10 निर्माण एजेंसी को हरित रत्न अवार्ड दिया गया।
कंस्ट्रक्शन कंपनियों के द्वारा 14 सूत्री जो नियम धूल प्रदूषण को कम करने के लिए बनाए गए उनका सही से पालन नहीं हो रहा है। कंपनियों के द्वारा जो गंभीरता होनी चाहिए डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने को लेकर के उसमें कमी है। उसको देखते हुए आज दिल्ली सचिवालय में पूरे दिल्ली के अंदर जहां जहां पर प्राइवेट या सरकारी कंस्ट्रक्शन चल रहा है 120 साइटों के उनके प्रतिनिधियों को आज हमने बुलाया था और उनको डिटेल में प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है कि क्या क्या उनको करना है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाद अब फरीदाबाद में भी पटाखों के भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया है। इस बारे में फरीदाबाद के जिलाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि जिले में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ये आदेश इस महीने की 22 तारीख से 31 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में ई कॉमर्स कंपनियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। श्री सिंह ने बताया कि केवल दिवाली, क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी। भारतीय रेलवे 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चला रहा है। आज इस कड़ी में उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल द्वारा स्टेशन परिसर में, उसके आसपास कैंटीन, खाद्य स्टालों की गहन सफाई की गई। इसके अलावा ये सुनिश्चित किया गया कि खाद्य विक्रेता, रसोई और कैंटीन के कर्मचारी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें और समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराते रहें। दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक अंतर्राज्यीय नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से 1200 ग्राम चरस और 9 ग्राम हेरोइन जब्त की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। इस याचिका में स्वयं को ब्रिटिश नागरिक घोषित करने वाले राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 6 नवंबर की तारीख तय की है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मेक इन इंडिया पहल दवा बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सक्रिय घटक एपीआई की आयात पर निर्भरता को कम करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। डॉ सिंह ने आज नई दिल्ली में 6वें सीआईआई फार्मा और जीवन विज्ञान शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर भारत न केवल आत्मनिर्भर बनता जा रहा है बल्कि ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की आपूर्ति सुलभ हो सके। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में दवाओं के उत्पादन में मात्रा के हिसाब से 3रे स्थान पर और मूल्य के हिसाब से 14वें स्थान पर है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा है कि सरकार का ध्यान समाज के निर्माण में युवाओं की क्षमताओं पर केंद्रित है। आज नई दिल्ली में विश्व पर्यावास दिवस 2024 के उद्घाटन के अवसर पर श्री साहू ने आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से सतत समाज बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर में पारंपरिक औषधियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद क्षेत्र में उद्यमों की स्थापना के प्रति युवाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की 8वीं स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि आयुर्वेद हमेशा से लोगों के जीवन का अभिन्न अंग रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रामक विज्ञापनों और नकली दवाओं को बढ़ावा देकर दूसरों को धोखा देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश में योग्य आयुर्वेदिक डॉक्टरों की जरूरत है ताकि लोगों को अयोग्य चिकित्सकों से परामर्श न लेना पड़े।
पिछले कुछ वर्षों में देश में आयुर्वेद कॉलेजों और उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में योग्य आयुर्वेद चिकित्सकों की उपलब्धता और बढ़ेगा।
राष्ट्रपति ने नवाचार और उद्यमिता के लिए संस्थान के इंक्यूबेशन सेंटर की सराहना करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य युवा उद्यमियों की क्षमता निर्माण करना है और इसने 50 स्टार्टअप स्थापित करने में मदद की है। उन्होंने संस्थान में अनुसंधान और विकास के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी संगठन की निरंतर प्रगति के लिए अनुसंधान और विकास आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए ने मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन को आगे बढ़ाने में भारत की असाधारण प्रगति की प्रशंसा की है। कोष की कार्यकारी निदेशक डॉ नतालिया कनम ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में महिलाओं के स्वास्थ्य और आरोग्यता में भारत के साथ साझेदारी करने के लिए कोष की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने वर्ष 2000 से 2020 के बीच मातृ मृत्यु अनुपात 70% तक कम करने में भारत के शानदार प्रयासों की सराहना की। इससे देश 2030 से पहले मातृ मृत्यु अनुपात को 70% से नीचे लाने के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की स्थिति में पहुंच गया है। इस उल्लेखनीय प्रगति ने देश भर में हजारों महिलाओं, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों की महिलाओं की जान बचाई है। डॉक्टर नतालिया कनम ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव को पट्टिका और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घोषणा की है कि भारत इस वर्ष ट्रेकोमा को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने में सफल रहा है। इसके साथ ही भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है। WHO ने कल नई दिल्ली में अपनी क्षेत्रीय समिति की बैठक के दौरान भारत की इस उपलब्धि को आधिकारिक रूप से प्रमाणित किया। ट्रेक्रोमा एक जीवाणु संक्रामक रोग है जो आंखों को प्रभावित करता है और संक्रमित व्यक्ति की आंखों, पलकों, नाक या गले के श्राव के माध्यम से फैलता है। 1950 से 1960 के दौरान ये रोग भारत में अंधेपन के प्रमुख कारणों में से एक था। सरकार ने इसके प्रसार को रोकने के लिए 1963 में राष्ट्रीय ट्रेक्रोमा नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद तीसरी बार सरकार बनाने के लिए गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस चुनाव में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा थे। चुनाव प्रचार के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने मंच से ऐलान किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे। श्री नायब सिंह से दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये फैसला संसदीय बोर्ड और विधायक दल लेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद पार्टी नेता और निवर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने श्री सैनी को जीत की बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा की भूमिका और महत्वपूर्ण होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बैटरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने संवाददाताओं को बताया कि पार्टी ने हरियाणा के 7 विधानसभा क्षेत्रों से मिली ऐसी 20 शिकायतें निर्वाचन आयोग को सौंपी हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया गया है कि इन ईवीएम मशीनों को जांच पूरी तरह से सील कर दिया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के चुनाव नतीजों को अप्रत्याशित बताते हुए कहा कि वे इसका विश्लेषण कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक संदेश में उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व को कई विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतें मिल रही हैं और निर्वाचन आयोग को इससे अवगत कराया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 10वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। रेपो दर को 6.5% पर बरकरार रखा गया है। रिजर्व बैंक ने स्थायी जमा सुविधा दर 6.25% और सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा बैंक दर 6.75% पर बनाए रखी है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने विकास पर ध्यान केंद्रित करने और मुद्रास्फीति को लक्ष्य के भीतर बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति रुख को बदलकर तटस्थ करने का निर्णय लिया है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई, जो निजी खपत और निवेश से प्रेरित है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आज शहर के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों के परिचालन के समय में संशोधन किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है में भारतीय वायुसेना के इतिहास और क्षमता पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 से आकाशवाणी गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने विश्व दृष्टि दिवस पर नेत्र रोगों, विशेष रूप से मायोपिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज एक सम्मेलन का आयोजन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास को आज लोक निर्माण विभाग ने सील कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पारंपरिक औषधियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 10वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने विश्व दृष्टि दिवस पर नेत्र रोगों विशेष रूप से मायोपिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज एक सम्मेलन का आयोजन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।